एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम इतिहास के एक ऐसे, कह सकते हैं, खतरनाक विचार की पड़ताल करने जा रहे हैं।
एक ऐसा विचार जिसके बारे में हमें लगता है कि वो शायद खत्म हो चुका है।
हाँ, लेकिन शायद वो बस अपना रूप बदलकर हमारे बीच मौजूद है।
बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं यूजेनिक्स की,
यानी इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने का विज्ञान।
और इसके लिए हम इतिहासकार फिलिपा लेविनी किताब यूजेनिक्स के सार को आधार बना रहे हैं। और सच कहूं तो इस किताब को पढ़कर मेरे कई सारे भ्रम टूटे हैं।
हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जब यूजेनिक शब्द सुनते हैं तो सीधे नाजी जर्मनी और हिटलर के बारे में सोचते हैं।
बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी पहली छवि वही आती है।
पर इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सोच ये नाज़ियों से बहुत पहले शुरू हुई थी।
अच्छा।
हाँ, और पूरी दुनिया में फैली हुई थी, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि स्वीडन जैसे देशों में भी।
और इसे एक बहुत प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचार माना जाता था।
बिल्कुल, और यही बात इसे आज के लिए बेहद जरूरी बना देती है।
कैसे?
आज जब हम जीन एडिटिंग, डिजाइनर बेबीज और IVF जैसी तकनीकों की बात करते हैं,
तो बेहतर इंसान बनाने का विचार फिर से हमारा सामने है।
सही कहा, ये चर्चा हमें उन नैतिक सवालों के लिए तैयार करती है जिनका सामना आज हम कर रहे हैं।
तो चलिए इस विचार की जड़ों तक चलते हैं। सबसे पहले लेखक को जानना जरूरी है, फिलिपा लेविन।
हाँ, और वो कोई आम इतिहासकार नहीं है। उनकी विशेषज्ञता ब्रिटिश साम्राज्य, जेंडर और विज्ञान के इतिहास में है।
और मुझे लगता है यही चीज उनके नजरिए को खास बनाती है।
बिल्कुल, वो यूजेनिक्स को सिर्फ एक, आप कह लीजिए, सन की वैज्ञानिक थ्योरी की तरह नहीं देखती।
तो फिर वो इसे कैसे देखती हैं?
वो दिखाती हैं कि ये कैसे सत्ता, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और खासकर
महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण का एक औजार था।
हाँ, एक शक्तिशाली औजार। वो धागों को जोड़ती हैं कि कैसे भारत जैसे उपनिवेशों पर राज करने की सोच, समाज में पहले से मौजूद नस्लीय भेदभाव और महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझने की मानसिकता,
हाँ,
इन सब ने मिलकर यूजेनिक्स के विचार को खाद पानी दिया।
सही।
वो इसे किसी लैब में पैदा हुआ आइडिया नहीं, बल्कि समाज की ताकतों का नतीजा बताती हैं।
तो किताब का जो मुख्य तर्क है वो क्या है?
लेविन कहती हैं कि यूजेनिक्स कोई हाशिए का, कोई फ्रिंज आइडिया नहीं था।
नहीं था?
नहीं, ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक मुख्य धारा का ग्लोबल प्रोजेक्ट था। उस दौर के सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सुधारक,
हाँ
राजनेता,
हाँ
वो सब इसे सपोर्ट कर रहे थे,
और यही बात तो सबसे ज्यादा डराती
है ना?
हम सोचते हैं कि ऐसी बातें कुछ बुरे कट्टरपंथी लोग ही करते होंगे।
बिल्कुल, लेकिन लेविन बताती हैं कि इसे तो उस वक्त के पढ़े लिखे प्रगतिशील लोग ही आगे बढ़ा रहे थे।
और उनका मानना क्या था?
उनका मानना था कि अगर हम अच्छे जीन्स वाले लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें
और कमजोर या अयोग्य जीन्स वालों को रोकें,
तो हम गरीबी, अपराध, बीमारी सब कुछ खत्म कर सकते हैं।
एक परफेक्ट समाज बना सकते हैं,
एक यूटोपिया बनाने का सपना,
जो बहुत जल्दी एक डरावने सपने में बदल गया।
हाँ, ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे बेहतर समाज बनाने का ये मासूम सा दिखने वाला विचार धीरे धीरे भेदभाव, जबरन नसबंदी
और आखिरकार नाजी जर्मनी में हुए जनसंहार का आधार बन गया।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब की शुरुआत होती है इसके ओरिजिन से। 1883 में चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई फ्रांसिस गैल्टन ने ये शब्द गढ़ा, यूजेनिक्स,
जिसका मतलब था अच्छी पैदाइश।
बिल्कुल, उस समय डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत नया नया था और माहौल ऐसा था कि विज्ञान हर समस्या का हल निकाल सकता है।
तो लोगों को ये आइडिया बहुत आकर्षक लगा होगा।
बहुत ज्यादा। अगर हम जानवरों और फसलों की ब्रीडिंग करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं तो इंसानों को क्यों नहीं?
सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है।
हाँ, लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि ये विचार आया कहाँ से, बल्कि ये है कि ये दुनिया भर में फैला कैसे।
ये किसी एक देश की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, अमेरिका में तो ये जुनून की हद तक पहुंच गया था।
अच्छा।
वहां इसका इस्तेमाल दक्षिणी और पूर्वी यूरोप से आने वाले आप्रवासियों को रोकने के लिए किया गया, जिन्हें जेनेटिक रूप से कमतर माना जाता था।
और कानून भी बनाए गए थे शायद।
हाँ, कानून बनाए गए जो अलग अलग नस्लों के लोगों के बीच शादी को रोकते थे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के 30 से ज्यादा राज्यों में ऐसे कानून थे जिनके तहत हजारों लोगों की उनकी मर्जी के बिना जबरन नसबंदी कर दी गई।
और ये कौन लोग थे?
गरीब, मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, या बस ऐसे लोग जिन्हें समाज अयोग्य समझता था।
ये तो अविश्वसनीय लगता है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा था।
नहीं, किताब बताती है कि ब्राजील से लेके जापान तक हर देश ने इस विचार को अपने हिसाब से अपनाया।
ब्रिटेन में भी?
हाँ, ब्रिटेन में इसे क्लास यानी अमीर गरीब के भेद को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया।
और सबसे हैरान करने वाली बात, स्वीडन।
हाँ, स्वीडन जैसे देश जिन्हें हम बहुत प्रगतिशील मानते हैं, उन्होंने भी इसे अपने वेलफेयर स्टेट का हिस्सा बनाया।
और 1970 के दशक तक वहाँ जबरन नसबंदी होती रही।
तो ये काम कैसे करता था, मतलब इसके तरीके क्या थे?
लेविन बताती है कि इसके दो पहलू थे, पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेनिक्स।
पॉजिटिव वाला सुनने में उतना बुरा नहीं लगता शायद।
हाँ, इसका मकसद था योग्य माने जाने वाले लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना,
जैसे अमेरिका में फिटर फैमिली प्रतियोगिताएं होती थी।
ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है,
है ना?
मेलों में जैसे हम पशुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं, वैसे ही परिवारों को स्टेज पर खड़ा किया जाता था
और उनके स्वास्थ्य, उनके वंश और उनके गुणों के आधार पर उन्हें मेडल दिए जाते थे।
हाँ, राष्ट्र के लिए अच्छे बच्चे पैदा करो का नारा दिया जाता था।
ये तो मतलब इंसानों को जानवरों की तरह आंका जा रहा था।
बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि इसका जो दूसरा पहलू था, नेगेटिव यूजेनिक्स, वो इससे कहीं ज्यादा डरावना था
और कहीं ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भी।
हाँ, नेगेटिव यूजेनिक्स का सीधा मतलब था अयोग्य लोगों को किसी भी हाल में बच्चे पैदा करने से रोकना।
और इसके तरीके बहुत क्रूर थे।
बहुत। ऐसे लोगों को समाज से अलग करके संस्थाओं में बंद कर देना, उनकी शादियों पर रोक लगाना
और सबसे भयानक, उनकी जबरदस्त नसबंदी कर देना।
और ये सब कानून की नजर में सही था।
हाँ, अमेरिका का 1927 का बक बनाम बेल का सुप्रीम कोर्ट केस, वो उसका सबसे भयावह उदाहरण है।
उस केस में क्या हुआ था?
कैरी बक नाम की एक गरीब महिला की जबरन नसबंदी को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिखा, 3 पीढ़ियों के मूर्ख काफी हैं।
ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है।
ये दिखाता है कि ये विचार समाज में कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुका था।
मतलब ये कोई सनकी वैज्ञानिकों का काम नहीं था?
नहीं, इसे राज्य का पूरा समर्थन हासिल था।
और यहीं से ये विचार ये नस्लवाद से जुड़ जाता है।
हाँ, लेविन का तर्क है कि यूजेनिक्स ने कुछ नया नहीं किया।
अच्छा,
उसने बस समाज में पहले से मौजूद नस्लीय भेदभाव पर विज्ञान का एक ठप्पा लगा दिया।
मतलब ये कह दिया कि देखो, विज्ञान भी मानता है कि कुछ नस्लें दिमागी और शारीरिक रूप से दूसरों से बेहतर होती हैं।
बिल्कुल, इसने श्वेत वर्चस्व, व्हाइट सुप्रीमेसी और उपनिवेशवाद को एक वैज्ञानिक आधार दे दिया।
तो ये कहना आसान हो गया कि यूरोपीय नस्लें राज करने के लिए ही बनी हैं और बाकी नस्लों को।
और इसी सोच का सबसे चरम और भयानक रूप हमें नाजी जर्मनी में देखने को मिला।
हाँ, नाजी ने कुछ नया आविष्कार नहीं किया था।
नहीं, उन्होंने बस उन विचारों को लिया जो अमेरिका और यूरोप में पहले से ही लोकप्रिय थे
और उन्हें उनकी तार्किक इंतहा तक पहुंचा दिया।
उन्होंने अमेरिका के नसबंदी कार्यक्रमों से प्रेरणा ली और नस्लीय स्वच्छता के नाम पर
पहले लाखों विकलांगों और मानसिक रोगियों की नसबंदी की
और फिर यहूदियों, रोमा लोगों और दूसरों का योजनाबद्ध तरीके से जनसंहार किया,
जिसे हम होलोकॉस्ट कहते हैं।
और एक और पहलू है जिस पर लेविन बहुत जोर देती हैं, और वो है जेंडर।
हाँ, ये पूरा आंदोलन असल में महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण के बारे में था।
महिलाओं को व्यक्ति नहीं
बल्कि राष्ट्र की संपत्ति के तौर पर देखा गया।
उनकी कोख को राष्ट्र के भविष्य का जरिया माना गया।
बिल्कुल, योग्य यानी अमीर श्वेत महिलाओं को ये कहकर प्रोत्साहित किया गया कि ज्यादा बच्चे पैदा करना उनका देशभक्ति का कर्तव्य है।
और दूसरी तरफ गरीब, अश्वेत, आप्रवासी या विकलांग महिलाओं को राष्ट्र के लिए एक खतरे के तौर पर देखा गया
और उनकी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करना राज्य ने अपना हक समझ लिया।
ये सब तो इतिहास की बात हो गई, पर शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तब आता है जब लेविन आज के दौर की बात करती हैं।
वो पूछती हैं कि क्या ये सब सच में खत्म हो गया है
या इसने बस एक नया चमकीला भेस बदल लिया है।
वो इसे नया यूजेनिक्स या बैकडोर यूजेनिक्स कहती हैं।
हाँ, आज सरकारें जबरदस्ती किसी की नसबंदी नहीं करती,
लेकिन
जब माता पिता आईवीएफ क्लिनिक में जाकर भ्रूण की जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाते हैं
और डाउन सिंड्रोम जैसी किसी स्थिति का पता चलने पर गर्भपात का फैसला लेते हैं,
तो क्या ये उसी पुरानी सोच का नया रूप नहीं है?
ये एक बहुत मुश्किल सवाल है ना?
बहुत। आज ये सरकारी दबाव नहीं बल्कि बाजार और व्यक्तिगत पसंद के रूप में आता है।
हम सब एक स्वस्थ बच्चा चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है,
लेकिन सवाल ये है कि स्वस्थ की परिभाषा कौन तय कर रहा है?
सही।
क्या हम अनजाने में ये संदेश दे रहे हैं कि कुछ तरह की जिंदगियां जीने लायक नहीं हैं? क्या हम धीरे धीरे इंसानी विविधता को खत्म कर रहे हैं?
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें तो पहली क्या होगी?
मेरे लिए तो ये है कि अच्छे इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं। यूजेनिक्स की शुरुआत दुनिया को बेहतर बनाने के नेक इरादे से हुई थी, लेकिन इसका नतीजा इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था।
मेरे लिए दूसरा सबक ये है कि विज्ञान कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता, वो हमेशा समाज के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है।
बात तो सही है।
यूजेनिक्स ने हमें दिखाया कि कैसे वैज्ञानिक तथ्य का इस्तेमाल भेदभाव को सही ठहराने और कमजोर लोगों पर नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है।
ये हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक दावों पर हमेशा सवाल उठाना क्यों जरूरी है।
और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है,
कि यूजेनिक्स का भूत मरा नहीं है। हाँ, ये आज भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी और परफेक्ट जीवन की हमारी चाहत से जुड़ी बहसों में जिंदा है।
भाषा बदल गई है, तरीके बदल गए हैं,
लेकिन कुछ इंसानों को बेहतर और कुछ को कमतर समझने की सोच कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं।
जैसे
एक जगह लेविन कहती हैं, यूजेनिक्स कभी सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं था, ये हमेशा सत्ता के बारे में था।
ये एक लाइन में पूरी कहानी कह देती है।
बिल्कुल, इसका असली मकसद ज्ञान खोजना नहीं बल्कि ये तय करना था कि समाज में कौन बच्चे पैदा करेगा और कौन नहीं।
एक और विचार है जिसने मुझे बहुत झकझोरा।
कौन सा?
यूजेनिक्स की त्रासदी ये नहीं है कि इसे राक्षसों ने अंजाम दिया, बल्कि ये कि इसकी वकालत वो लोग कर रहे थे जो सच में मानते थे कि वो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं।
ये हमें किसी भी विचार, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देता है।
और अंत में ये विचार जो आज के लिए एक सीधी चेतावनी है, करी है लेकिन सरकारी जबरदस्ती के रूप में नहीं, बल्कि उन निजी चुनावों में जो हम क्लिनिक और लैब में करते हैं।
ये जिम्मेदारी अब सरकार से हटके हम पर, समाज और व्यक्ति पर आ गई है।
तो एक आम इंसान इस जानकारी का क्या करे? ये सब जानकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदल सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहले तो ये हमें आज की बहसों को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है।
उदाहरण के लिए,
जैसे आज जब हम क्रिस्पियस जैसी जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में सुनते हैं जिससे हम आने वाली पीढ़ियों के DNA को बदल सकते हैं, तो ये किताब हमें रुख कर सोचने पर मजबूर करती है।
हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल कौन करेगा।
बिल्कुल, क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगी जिससे समाज में एक नया जेनेटिक विभाजन पैदा होगा?
हाँ, और ये हमें अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को पहचानने में भी मदद करता है।
सही कहा, यूजेनिक्स ने सिखाया कि समाज कितनी आसानी से कुछ लोगों को बोझ या समस्या मान लेता है।
आज भी जब हम विकलांगता, गरीबी या किसी समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाओं के आधार पर कोई राय बनाते हैं,
तो हम अनजाने में उसी पुरानी सोच को तो नहीं दोहरा रहे?
मेरे लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसानियत को बेहतर बनाने का विचार जितना आकर्षक है उतना ही फिसलन भरा भी है। ये इतिहास हमें चेतावनी देता है कि जब हम कुछ इंसानी जिंदगियों को दूसरों से ज्यादा मूल्यवान समझने लगते हैं,
तो हम एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ते हैं जिसका अंत बहुत भयावह हो सकता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि हमें इस इतिहास को याद रखना होगा,
खासकर आज।
हाँ, खासकर आज जब हमारे पास इंसानी जीवन में दखल देने की अभूतपूर्व ताकत है। ये किताब एक रिमाइंडर है
कि टेक्नोलॉजी हमें शक्ति तो देती है लेकिन इतिहास हमें विवेक देता है,
और हमें शक्ति से ज्यादा विवेक की जरूरत है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।